सेहत की बातें डॉक्टर से बातें, क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अर्पण रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी। ग्रीष्म ऋतु की आतब बढ़ते ही चहल पहल कम हो जाती है, वृक्षों के साथ हमारी निकटता बढ़ जाती है, लोग घरों में कैद होने लगते हैं। ऐसे में ग्रीष्म की अनुभूति का एक बड़ा हिस्सा तो पसीना बहकर निकल जाता है। आज हम शुरुआत करते हैं ग्रीष्म ऋतु की कुछ साहित्यिक अनुभूतियों के साथ।
फिर नब से अंगारे बरसे, गर्मी के दिन आए हैं, मुश्किल हुआ निकलना घर से, गर्मी के दिन आए हैं, लंबे लंबे जो अजगर से, गर्मी के दिन आए हैं। ग्रीष्म की धधकती धूप साधन संपन्न लोगों के लिए तो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि उन्हें कौन सा धूप में निकलना है, घर वातानुकूलित, बाहर जाने के लिए गाड़ी वातानुकूलित। लेकिन गरीब रामू क्या करे, अखबार नहीं बेचेगा तो भूखे पेट को क्या समझाएगा। धधकती धूप में रामू खड़ा है बेचता अखबार, जिसमें बड़े बड़े सौदे छप रहे हैं। सूरज हमारी पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, पर उसका अतिशय ताप हमारे मन में झुंझलाहट पैदा कर देता है। किसने बिठा दिया है मेरे कंधे पर सूरज, एक जलता हुआ असह्य बोझ कब से ढो रहा हूँ। कटते न लंबे दिन काटे, जड़ती है गालों पर चाटे, धरती पर दौड़ रही सरपट, गर्मी की धूप बड़ी नटखट।
तो श्रोताओं, ये नटखट धूप जाड़ों में जितनी राहत देती है, गर्मी के इस मौसम में हलकान कर देती है, घर के सदस्यों को बीमार कर देती है। गर्मी में होने वाली बीमारियों के बारे में ढेर सारी जानकारियां, उनके लक्षण व बचाव की बातें लेकर आए हैं हम आज के कार्यक्रम में, इस उम्मीद के साथ कि ये बातें, ये जानकारियां आपको बीमारियों से बचाने में भी मदद करेगी और रोगों में राहत भी देगी। कबूल करें आज के इस कार्यक्रम में संज्ञा का नमस्कार। आज ये जानकारियां देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रमनेश मूर्ति और डॉक्टर लखन सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं बात हीट इलनेस यानी गर्मी से होने वाले रोगों के बारे में।
ग्रीष्म ऋतु में होने वाली बीमारियों में सबसे प्रमुख है ताप से संबंधित बीमारियां, जिन्हें हम अंग्रेजी में हीट इलनेसेस कहते हैं। ये बीमारियां अलग अलग तीव्रता लेकर आती हैं, इनका असर कम से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा होता है, और इनको इनके बढ़ते क्रम में हम देखना चाहें तो ये सबसे पहले हीट क्रैम्प्स कहलाती हैं। हीट क्रैम्प्स एक वो परिस्थिति है जिसमें शरीर की जो बड़ी मांसपेशियां हैं, जैसे कमर की, जांघ की या पैर की, ये जकड़न महसूस करती हैं, इनमें क्रैम्प्स आ जाता है। ऐसा अक्सर खिलाड़ियों में होता है जो ग्रीष्म ऋतु में देर तक बाहर खेलते रहते हैं, और उसके कारण पानी का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, जो लवण है और पानी है, उसकी कमी होने से ये क्रैम्प्स आते हैं।
हीट क्रैम्प्स यानी गर्मी की अकड़न या ऐंठन, जो गर्म या उमस भरे मौसम में शारीरिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों की मांसपेशियों में रुक रुक कर होने वाली अनैच्छिक ऐंठन है, जो ज्यादा खतरनाक नहीं होती।
इसके बाद की जो स्थिति होती है उसे हम हीट एग्जॉशन कहते हैं। इसे आप आगे आने वाली किसी बड़ी ताप संबंधी समस्या का एक सूचक मान सकते हैं। इसके अंतर्गत आदमी में बहुत जबरदस्त पसीना आता है, उसके बाद उसकी सांस तेज हो जाती है और जो पल्स है वो कम होने लगता है। इसके साथ ही हीट एग्जॉशन में पेट में दर्द, उल्टी या फिर पेट में अत्यधिक जकड़न, ये बहुत सामान्य सी बातें हैं।
हीट एग्जॉशन यानी गर्मी से थकावट, शरीर के तरल पदार्थ और लवणों की कमी के कारण ये रोग हो सकता है। इस रोग को गर्मी साष्टांग प्रणाम भी कहा जाता है।
और उसके बाद तीसरी और जो सबसे प्रमुख और कई मामलों में जानलेवा भी साबित होने वाली स्थिति है, वो है हीट स्ट्रोक की। इसमें जो शरीर को नियंत्रित करने का जो अंग है मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस, तो इसमें जो थर्मोरेगुलेशन कहा जाता है, ताप को नियंत्रित करने का भाव थर्मोरेगुलेशन कहलाता है, वो पूरी तरह अस्त व्यस्त या नेस्तनाबूद हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रैम्प, क्रैम्प के बाद एग्जॉशन, एग्जॉशन के बाद स्ट्रोक की स्थिति होती है, और स्ट्रोक में चूंकि मस्तिष्क का भी असर होता है, इसके कारण कन्फ्यूजन, डिलीरियम, कोमा, ड्राउजीनेस जैसी स्थिति भी अक्सर बन जाती है, और अगर समय पे यथोचित उपचार न किया गया तो जानलेवा भी साबित हो जाती है।
हीट स्ट्रोक, जिसे ऊष्माघात के नाम से जाना जाता है, इससे पीड़ित व्यक्ति के शरीर का तापमान अत्यधिक धूप या गर्मी की वजह से बढ़ने लगता है।
हमारे शरीर का सामान्य तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। हीट स्ट्रोक से दिमाग में मौजूद तापमान नियंत्रित करने वाली प्रणाली, जिसे थैलेमस सिस्टम कहा जाता है, उस पर असर पड़ता है और इस अवस्था में शरीर अपने आप को ठंडा रखने की क्षमता खो देता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर शारीरिक तापमान होने पर शरीर की चयापचय यानी मेटाबॉलिक क्रियाओं पर भी असर पड़ने लगता है।
कभी कभी एक ऐसी स्थिति आती है मरीज जिसमें सीरियस कंडीशन, जिसको मेडिकल इमरजेंसी बोलते हैं, हीट स्ट्रोक बोलते हैं जिसको, इसमें सीधे सीधे ब्रेन को हाइपरथर्मिया की वजह से ब्रेन में चेंजेस होते हैं और इसके साथ ही फेफड़े में और किडनी में, ये तीन जो हार्ट, किडनी, ब्रेन, ये तीनों सिस्टम इसमें डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं ऐसे मरीजों को। इसीलिए जब भी ऐसा लगता है कि एक प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद नहीं वो हो रहा है, तो तत्काल उसको नियर जो भी अस्पताल हो वहाँ ले जाना चाहिए। कोल्ड रूम है हमारे पास, जो हीट स्ट्रोक के मरीज को अलग से रखते हैं, उसके प्रॉपर उसको हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं और उसको इलेक्ट्रोलाइट से बचाते हैं, और ज़्यादातर मरीजों में कन्वल्शंस बहुत आते हैं, झटके बहुत आते हैं, तो उसके वो मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर उनका इलाज किया जाता है।
हीट स्ट्रोक की जानकारी तो आपने सुनी समझी, गर्मी से होने वाली कुछ और बीमारियों के बारे में जाने?
इसके अलावा ताप संबंधी इस मौसम में होने वाली बीमारियों में हीट टिटैनी, जैसे धनुष्टंकार या मिर्गी के जो सीजर आते हैं, ऐसे शरीर का हिलना जिसे हीट टिटैनी कहा जाता है, हीट रैश आपने देखा होगा बच्चों में, खासकर लाल चकत्ते का बन जाना या कुछ घमोरियों जैसा उगाना, तो ये रैश की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा एक हीट सिंकोप होता है, जिसमें आदमी गश खाकर गिर जाता है। तो ताप रिलेटेड और ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक ताप से होने वाली बीमारियां अलग अलग तीव्रता लेकर एक सीक्वेंस में या एक सीरियल में वो आगे बढ़ती हैं और वे कई स्वरूपों में अपने आप को प्रकट करती हैं।
यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, यदि प्रारंभिक स्थिति में इलाज न करवाया गया तो सीक्वेंस में, सीरियल में ये बीमारियां एक ही व्यक्ति को बढ़ती जाती हैं, या अलग अलग बीमारियां अलग अलग व्यक्ति को कभी भी अटैक कर सकती हैं?
ये अलग अलग लोगों को अलग अलग है। जैसे मैंने बताया, हीट क्रैम्प्स आमतौर पर खिलाड़ियों में जो तेज प्रकाश में या सूर्य की गर्मी में, धूप में खेलते हैं, उनको होती है। एग्जॉशन खासकर जो ईंट भट्टा वर्कर या ये जो अपने बिल्डिंग में लगे कर्मचारी होते हैं या श्रमिक मजदूर होते हैं, उनको होती है। काम होने के बाद घर जाकर इन्हें हीट एग्जॉशन का सामना करना पड़ता है, जहां अत्यधिक थकान और पेट में दर्द और उल्टी जो होती है वो एग्जॉशन की स्थिति है।
गर्मी से होने वाले रोगों में किन लोगों को बचाव की ज्यादा जरूरत होती है? जिनकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम है, इम्यूनिटी कम है, या जिनमें धूप सहने की शक्ति जरा कम है, या कुछ और?
एक्चुअली में इसमें सबसे ज़्यादा जो लेबर क्लास के लोग रहते हैं और जो लगातार कंटिन्यूअस धूप में, जिसमें डायरेक्ट सन रेज आता है, जिसमें धूप का जो किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, ऐसे लोगों में, और खासकर जो मरीज होते हैं और कुछ दवाइयां लेते रहते हैं, खासकर जो मरीज जो एंटीसाइकोटिक दवाइयां लेते हैं और जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, इन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। इनको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना कपड़े के, बिना प्रोटेक्शन के काम करते हैं, इन लोगों में।
अब बुखार तो किसी भी बीमारी का एक सामान्य सा लक्षण होता है। उल्टी दस्त होने पर भी लोग पहले दो चार दिन घर के नुस्खे या जानी पहचानी दवाओं से इलाज शुरू कर देते हैं। क्या लक्षण देखकर, कैसी स्थिति देखकर रोगी को फौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए?
जब भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, यूरिन पास नहीं कर रहा है और पानी वगैरह भी नहीं पी पा रहा है उल्टी, तो जो भी नियर बाई अस्पताल है वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि इमीडिएट उनको हाइड्रेशन मेंटेन करना और उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, उसके अकॉर्डिंगली उसको एक्सटर्नल हम लोग जो भी कोल्ड स्पंजिंग के उसके कई मेथड्स हैं, जैसे हम लोग ठंडे पानी पिलाना, नेजोगैस्ट्रिक के ट्यूब के माध्यम से शरीर में ठंडे कपड़े रखना, ये सब चीज़ें करके इन्वायरमेंटल एयर फैन के नीचे रखना, बहुत सारे मेथड है जिसके माध्यम से हॉस्पिटल में इलाज की जाती है।
ये सब बातें प्राथमिक उपचार के रूप में घरों में भी की जाती हैं, पर जरा भी मामला घर में न संभल रहा हो तो फौरन जाएं डॉक्टर के पास। हीट स्ट्रोक के कुछ और लक्षण हैं।
पहला लक्षण बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके साथ में बाकी लक्षण आएंगे। सिर दर्द के साथ में यदि उल्टियाँ कंटिन्यूस हो रही है, प्यास बहुत लग रही है और हाथ पैर में क्रैम्प्स हो रहे हैं, दर्द हो रहे हैं और पेशाब एक समय पे नहीं होकर और शरीर की टेम्परेचर 102 से ज़्यादा हो रही है, सामान्यतः 104 तक शरीर में एक क्षमता होती है करने की, 104 से ज़्यादा हुआ तो क्षमता खत्म हो जाती है, तो ऐसे यदि शरीर की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ऐसे करने में तत्काल अस्पताल।
कई लोग गांव में रहते हैं, दूर दराज से अस्पताल तक पहुँचने में उन्हें समय लग सकता है, ऐसे में कौन से प्रारंभिक उपचार घर में शुरू किए जा सकते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है।
ऐसी कंडीशन में ऐसी जगह उसको शिफ्ट करना चाहिए जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन अच्छे से एयर हो और आप बाहर से भी एक एयर दे सकते हैं, यदि आपके पास पंखे हैं तो पंखे तत्काल उसके आसपास लगा दें और पंखे नहीं है तो एक्सटर्नल पंखे से भी दे सकते हैं जो गांव में यूज़ कर सकते हैं, और उसको जो नॉर्मल वाटर जो होता है उसे गीले कपड़े से उसके शरीर में रखें। सबसे पहला एम जो होता है हमारा उसके जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसको जो बुखार तेज है उसको कम करना, उसके बाद बाकी सिम्टम्स अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। उस समय उस लेवल पर वही किया जा सकता है क्योंकि वो तो उल्टियाँ वगैरह नहीं होती हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा उसको इलेक्ट्रॉल या फिर पानी उसको देते रहें ताकि हाइड्रेशन मेंटेन रहे और छांव में रखें, और यदि ऐसा कभी महसूस होता है कि हीट स्ट्रोक के लक्षण हैं, ऐसा लग रहा है कि धूप पे करने के बाद जो भी डिहाइड्रेशन के साइंस होते हैं, ज़्यादातर मरीज जो आते हैं हीट स्ट्रोक के उनको सिर में दर्द, हाथ पैरों में क्रैम्प्स होने लगते हैं, एयर हंगर बोलते हैं जिसको, पानी खूब प्यास होने की इच्छा होती है, सांस फूलने लगता है, इसमें जो दो तरह की होती है, एक तो सामान्यतः जो मैनेजेबल होता है वहीं उसी स्तर पर कि आप उसको हवा देकर पानी पिलाकर और प्रोटेक्ट करके नॉर्मल पानी से उसके सिर में रख के या उसके शरीर में पानी का वो करके, अब कई बार हम लोग ठंडे पानी से नहलवाने की भी सलाह देते हैं।
इस भागती दौड़ती दुनिया में हर काम को सुबह या शाम को निपटा लिया जाए ऐसा तो अब सोचा भी नहीं जा सकता। काम करने के लिए धूप हो या बारिश घर से तो निकलना ही पड़ेगा, घर से निकले तो बीमार होने का खतरा हरदम साथ रहेगा, लेकिन इन रोगों को अपने तक न पहुंचने देने के लिए कुछ बचाव भी तो किए जा सकते हैं।
तेज धूप में निकलने से बचें, निकलना ही है तो छाते, टोपी, गॉगल्स का उपयोग करें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं, सिर्फ प्यास लगे तब नहीं, ज्यादा से ज्यादा पानी की मात्रा शरीर में बनाकर रखें।
अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, धूप में काम नहीं करना चाहिए, और यदि अपन ऐसी जगह ढूंढे जहाँ पर छांव हो और वहाँ पर और जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन हो और ड्राई एयर की अच्छी वो फैन की सुविधाएं हो, या बाहर में हैं तो वहाँ ऐसे पेड़ के नीचे जहाँ पर हवा मिलती रहे ऐसी जगह में काम करना चाहिए। उसमें प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है जिसमें शरीर को डायरेक्ट सन रेज नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि सूरज की जो किरणें होती हैं काफ़ी उसमें रेडिएशंस और वो सब चीज़ें होती हैं, तो शरीर जो हमारी होती है बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व करती है उस चीज़ को, उस चीज़ से अगर कोई यदि कोई प्रोटेक्शन अपन किसी माध्यम से बचा सकते हैं तो उसको बचाना चाहिए। और तेज़ धूप में यदि समय 12 बजे 1 बजे 2 बजे यदि जाना पड़ता है तो पूरे अपने शरीर को ढक के प्रोटेक्शन करके जाना चाहिए।
गर्मी को मात देने के लिए कुछ और बातें डॉक्टर रमनेश मूर्ति बता रहे हैं।
देखिए बचाव के लिए तो आदमी को पौन घंटे या एक घंटे के अंतराल से, खासकर ये हमारे श्रमिक भाइयों के लिए या ऐसे वर्कर्स के लिए जिन्हें लगातार तेज गर्मी में काम करना पड़ता है, एक घंटे में अवश्य ब्रेक लें, 5 मिनट का ही सही, 10 मिनट का ही सही, और यथासंभव छायादार जगह में आना, ढीले कपड़े पहनना जो ज़्यादा तंग ना हो, और अपने आप को मेंटल एग्नी से बचाना, क्योंकि इस समय इस स्थिति में यह भी होता है कि आप पानी नहीं भी पी रहे हैं और अगर आप किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो उसका भी एक असर बहुत जल्दी होता है, तो अपने आप को बचा के रखना चाहिए। हेड गियर्स जैसे आजकल दुपट्टा, हैट्स या जो गाँव में एक व्यवस्था होती है गमछा, ये सब लगाया जाना निश्चित रूप से हितकर हो। अपने साथ पानी रखें, पानी में घर का तैयार किया हुआ ORS घोल नुमा जिसमें एक चुटकी नमक और एक चम्मच शक्कर का घोल हो, नींबू पानी हो, शिकंजी जिसे कहते हैं, इसका सिप फॉर्म में, जरूरी नहीं है कि आप पूरा ग्लास भर भर के पिएं, उपलब्धता अनुसार उसे जरूर पिएं, क्योंकि क्रैम्प्स जो सबसे प्रारंभिक लक्षण है उसका मेन कारण ही इलेक्ट्रोलाइट की कमी या इम्बैलेंस और जल की कमी है, तो सादा पानी के अलावा कुछ लवण युक्त या इलेक्ट्रोलाइट युक्त घोल ORS शैशे मार्केट में मिलता है जो बार बार खरीदने में महंगा भी पड़ सकता है, इसलिए मैंने आपको कहा कि इसे घर में भी आसानी से बनाया जा सकता है। फलों में सेब और केला ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये जीवनदायक भी हो सकते हैं। संभव हो आप घर में कई बार पसिया पेज रहता है उसमें नमक डाल के पिया जा सकता है, नारियल पानी है, और ये जितने आज के मौसमी फल हैं तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, इनका अवश्य सेवन किया जाना चाहिए। हर मौसम की अपनी एक खूबी है, एक विशेषता है, और जो फल उस मौसम में आने का कारण ही यह है कि ये सभी जलयुक्त सब्जी हैं या फल हैं।
डॉक्टर साहब ने इतने सारे फलों के नाम लिए, लेकिन गर्मियों में सबसे ज्यादा शौक से पिया जाने वाला और गर्मी भगाने वाले ड्रिंक के रूप में जाना जाने वाला गन्ने के रस का नाम इन्होंने क्यों नहीं लिया, ये बात हमें जरा खटक गई। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा,
आपने बिल्कुल सही जिक्र किया, मैंने गन्ने का रस का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें फिर संक्रमण की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। अपने आप में गन्ने रस में कोई खराबी नहीं है, जो समस्या आती है वो संक्रमण की, गंदे हाथ से जो इसे पेरते हैं या जो इसको चलाते हैं, ग्लास का न धुलना, गंदे पानी का उपयोग धोने में, बर्फ की क्वालिटी, बर्फ कैसे पानी से बना है, इसलिए मैंने उसे कहने से बचा है। लेकिन अगर ऐसा है तो गन्ना अपने निज स्वरूप में सामान्य फल की तरह उसे काट कर छील कर भी खाया जा सकता है, गन्ना रस ही पिया जाना आवश्यक नहीं।
गर्मी भरी धूप में निकलना, फिर कार की एसी में बैठ जाना, ऑफिस पहुंचना, वहां कूलर एसी के सामने पहुंचकर उफ कितनी गर्मी है बोलते हुए अपना पसीना सुखाना, पानी पीना, कितना सही है जानना चाहेंगे आप?
देखिए, बॉडी में एक थर्मोरेगुलेशन है, आपको तत्काल आते ही एसी में या ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए। थोड़ा पहले एक एम्बियंट टेम्परेचर होता है, आप जिस स्थिति से आए हैं तो उस स्थिति से पहले आप तेज गर्मी से आके आप एक छायादार जगह में आ जाएं। अपने अगर कपड़े कुछ तंग हैं या टाइट हैं तो उसे ढीला कर लें, वो लूज रहें, तो ये करने के उपरांत फिर आप एसी रूम में जा सकते हैं। कम से कम वो अंतराल 5 से 7 मिनट का होना चाहिए। एकदम ठंडा पानी पीने से तो बचना ही चाहिए, वो मिक्स हो सकता है, वो गर्म और ठंडा कुनकुना उसका मिक्स हो के हो, एकदम आइस कोल्ड वाटर तत्काल पीना शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।
चाय, कॉफी, नशा, अल्कोहल, निकोटिन का भी धूप में बाहर निकलने और इन बीमारियों से कोई संबंध होता है क्या? चलिए जाने।
ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो कि धूप में जाने के बाद कहीं कॉफ़ी वगैरह ले लेते हैं, और कुछ लोग कुछ नशा भी करते हैं, गांजा लेते हैं, कैफीन लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। इन लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए धूप में, यदि इसमें डिहाइड्रेशन होता है, और यदि ये ले लिए हैं तो इनको मना करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि आप बिल्कुल मत जाइए, और यदि जाते भी हैं तो उनको ये मना करिए कि ये चीज़ें नहीं लेंगे धूप में।
शरीर में जल की कमी के लिए हम एक शब्द और सुनते हैं, डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। क्या होता है ये और क्या होता है इसके कारण?
डिहाइड्रेशन शरीर में जल की कमी को कहते हैं। इसमें शरीर से जल निकल जाने की हालत में जो सबसे पहले असर होता है वो हमारी त्वचा पर होता है, त्वचा सूखी और सिकुड़न युक्त हो जाती है, हमारी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, पल्स स्लो हो जाते हैं। तो डिहाइड्रेशन, क्योंकि जल हमारे जीवन के लिए जो टर्गर है, उसमें जो एक दाब बनाए रखने के लिए और लवण के साथ मेटाबॉलिक संतुलन बनाए रखने के लिए जल और लवण का आनुपातिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है, और कम पानी पीने से, और आज के इस समय में तो कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी निश्चित रूप से पिया ही जाना चाहिए, अधिक हो सकता है कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण फिर पेशाब का पीला होना, पेशाब में जलन, या इसके अतिरिक्त एसिडिटी, ऐसी कई चीज़ें हैं जो हीट के सीधे असर के साथ जो मेटाबॉलिक असंतुलन होता है उसके कारण भी कई बीमारियां फिर हो सकती हैं।
याद करिए आज से 15-20 वर्ष पूर्व की स्थिति। हम तो यूं ही बिना ओढ़े लपेटे निकल जाते थे धूप में, कुछ नहीं होता था, लेकिन आज ऐसी कल्पना भी नहीं कर पाते। धूप में तेजी बढ़ गई, या अल्ट्रावायलेट रेज की बढ़ोतरी हो गई, या पोल्यूशन के कारण ऐसा हुआ, ऐसी जिज्ञासा क्या आपके मन में भी कभी जागी?
पर्यावरण में असंतुलन का सामना तो हमें करना ही पड़ रहा है। चिमनियों से निकलता हुआ धुआं, पेड़ों की संख्या में कमी कटाव के कारण, और कंक्रीट के जंगल जो बड़े बड़े अट्टालिकाएं और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, ये आज से 15-20 साल पहले कम थे या नहीं थे। तो ऐसे हालात में गर्मी की तीव्रता में तो निश्चित रूप से अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, वातावरणीय असंतुलन बढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है, पेड़ कम हुए हैं, तो उस लिहाज से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो निश्चित रूप से वर्तमान समय में पूर्व की अपेक्षा अधिक शानदायक साबित होती है।
इन कारणों से ही शायद गर्मी का तापमान भी, जो कभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंचता था, आज 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड का आंकड़ा पार कर जाता है। इससे हमारी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता में भी कमी आई है क्या?
जैसे जैसे सुविधाओं में वृद्धि हुई है, सुविधा भोगिता बढ़ी है, उसके बाद लोगों के उस चीज़ों को सहने की क्षमता में भी कमी आई है, एसी कल्चर बढ़ा है निश्चित रूप से, तो उसके कारण लोग जिस काम को पहले के 38 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री में कर पाते थे, आज वही 38 और 40 निश्चित रूप से 45 के बराबर लगता है। तो न केवल उसकी तीव्रता बढ़ी है सूर्य किरणों की या ताप, लोगों की प्रतिरोधक क्षमता में भी कम से कम ताप सहने के मामले में कमी तो आई है, ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हम उससे बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज्ड नहीं होते किन्हीं कारणवश, चाहे वो आधिकारिक कार्य हो या कार की संख्या बढ़ी है, या भी ऐसा हुआ है कि आदमी कम से कम निकलता है या आवश्यकता कम पड़ती है।
धूप में निकलने से त्वचा रोगों में भी बढ़ोतरी हुई है। सनबर्न, सन टैनिंग जैसे शब्द कॉमन हो गए हैं। आइए त्वचा पर धूप के असर के बारे में जानते हैं।
त्वचा रोग में हाइपर पिगमेंटेशन जो एक चीज है, जिसमें त्वचा का रंग काला पड़ जाना होता है, और इसमें जो मेलानिन जो पिगमेंट है जो हमारी त्वचा को रंग देते हैं, वे अधिक सक्रिय हो उठते हैं, और उसके कारण रैश और रैश के बाद लालिमा और लालिमा के फिर कालापन, इस प्रकार हाइपर पिगमेंटेशन एक काफ़ी समस्या के रूप में उभरी है, और जिसके लिए लोग जो जानकार हैं वे तो सनस्क्रीन लोशन वगैरह लगाते हैं, उनमें एक सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर होता है SPF। त्वचा में जलन या कालिमा होने पर त्वचा विशेषज्ञ से निश्चित रूप से संपर्क किया जाना चाहिए।
धूप से प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन क्रीम मेडिकल और कॉस्मेटिक्स दोनों तरह की दुकानों पर मिलती हैं। इन पर SPF यानी सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर का प्रतिशत 30-70 के बीच लिखा भी होता है। क्या हमें कोई भी क्रीम लेकर उसे यूज कर लेना चाहिए या जानना चाहिए कि कितने प्रतिशत वाला लोशन इस्तेमाल करें?
स्किन स्पेशलिस्ट या त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह लेके ही कितने परसेंट का SPF यूज करना है, आपके लोकेलिटी में सन रेस की तीव्रता कितनी है, आपकी स्किन सेंसिटिविटी कितनी है, ये अमूमन जो त्वचा रोग विशेषज्ञ उस एरिया में काम करते हैं वो जानते हैं। ज़्यादा SPF का उपयोग करने से वो ज़्यादा बचाव होगा, ऐसा कहना हर हाल में सही नहीं होता, इसलिए लोगों को इससे बचना चाहिए, और चाहे वो डर्मेटोलॉजिस्ट हो या डॉक्टर जो कॉस्मोलॉजिस्ट भी हो, उसकी सलाह लेकर ही कितने SPF का क्रीम या लोशन यूज करना है उसे प्रयोग में लाया जाना चाहिए।
डॉक्टर साहब ने बताया हर स्थान पर सूर्य की किरणों की तीव्रता भी अलग अलग होती है, कहीं उमस कहीं चिपचिपी गर्मी, तो बचे सनस्क्रीन का उपयोग खुद करने से, डॉक्टर या ब्यूटिशियन की सलाह जरूर लें।
ताप में जब आर्द्रता मिलती है तब उसकी तीव्रता बढ़ती है, सिर्फ ताप से ही आपको गर्मी नहीं लगती, उसमें आर्द्रता ज्यादा होने से वो हीट और बढ़ जाती है, उमस हो गई, तो उसका भी इस निर्धारण में बहुत बड़ा रोल है कि किस SPF को आप प्रयोग में लाएंगे। जैसे कुछ अमूमन चूरू चांदा रायगढ़ है ये चांपा, ये हमारे नॉन ड्राई टेम्परेचर एरियाज हैं, लेकिन इसी का कोस्टल एरिया में या टेम्परेट एरिया में या पहाड़ी एरिया में सूरज एक है, उसके द्वारा रोशनी दी जा रही है वो एक है, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आर्द्रता जहाँ अलग होती है तो उनकी जो तीव्रता का एहसास है वो भी इसलिए अलग अलग होता है। इस प्रकार SPF की रिक्वायरमेंट भी उस लोकेलिटी के हिसाब से अलग अलग।
मैं तो ये सलाह दूंगा कि कोशिश करें कि ज़्यादा धूप में ऐसे काम को थोड़ा सा पहले कर लें, और ज़्यादा जैसे 12 1 बजे 2 बजे जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है उस समय अवॉइड करें। यदि ऐसी कोई परिस्थिति बनती है उस समय करना है तो ऐसे जगह ढूंढें कि जहाँ पर प्रॉपर एयर हो, पानी की सुविधा हो और छांव हो, ऐसी जगह में काम करें और प्रॉपर अपने शरीर को प्रोटेक्ट करके रखें।
तो श्रोताओं, गर्मी को शरीर में प्रवेश करने से रोकें और बीमारियों को अपने से दूर रखने में सफल हों।
मौसमी फलों का सेवन करें, खान पान पर नियंत्रण रखें, खूब पानी पिए, तली चीजों से बचें। ऐसा ना करने पर फूड पॉइजनिंग का भी इस मौसम में खतरा होता है। नींबू पानी, कच्चे आम का पना, छाछ, ORS घोल और तरल पदार्थ हरदम लेते रहें। अल्कोहल व कैफीन युक्त पेय पदार्थों से परहेज रखें। तेज अल्ट्रावायलेट किरणों और धूप से बचने के लिए धूप चश्मा व टोपी हेड का प्रयोग करें। तुलसी, धनिया, हरे पुदीने की पत्तियां भी हीट स्ट्रोक से बचाव में लाभकारी होती हैं।
ग्रीष्म के आतप के उपरांत तप्त व्योम के हृदय पर मेघों की माला सुशोभित हो जाती है। ये आशावादी दृष्टि ग्रीष्म का आतप हमें भी दे जाता है कि हम आशावादी रहें। महाप्राण निराला के शब्दों में,
जला है जीवन यह आतप में दीर्घकाल, सुखी भूमि सुखे तरु, सूखे सिक्त आल बाल, बंद हुआ गुंज, धूली धूसर हो गए कुंज, किंतु पड़ी व्योम उर, बंधुनी मेघमाल।
अब दीजिए अपनी साथी अन्नपूर्णा के साथ संज्ञा को इजाजत। नमस्कार। सेहत की बातें डॉक्टर से बातें, इस सुनते रहें अर्पण रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी।
बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रेडियो अर्पण।